नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत तेजी से आगे बढ़ रही वैश्विक व्यवस्था में एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में उभरा है। सरकार रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के विजन के साथ आगे बढ़ रही है और देश रिफॉर्म एक्सप्रेस पर सवार है। संसद के दोनों सदनों ने ध्वनिमत से राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पारित किया। लोकसभा में विपक्ष का हंगामा लगातार जारी रहा। केंद्र, नागालैंड सरकार और ईस्टर्न नागालैंड पीपल्स ऑर्गेनाइजेशन ने फ्रंटियर नागालैंड टेरिटोरियल अथॉरिटी बनाने के लिए समझौता किया। मेघालय के ईस्ट जयंतिया हिल्स में कोयला खदान में हुए धमाके में 18 लोगों की मौत, राज्य सरकार ने जांच के आदेश दिए। और वडोदरा में रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु और दिल्ली कैपिटल्स के बीच महिला प्रीमियर लीग का फाइनल मैच जारी। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत वैश्विक मंच पर प्रतिस्पर्धा के लिए पूरी तरह तैयार है और आत्मविश्वास तथा निर्णायक नीतिगत सुधारों के साथ तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब देते हुए श्री मोदी ने कहा कि देश रिफॉर्म एक्सप्रेस पर सवार हो गया है।
हमने रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म के मंत्र को लेकर के आगे बढ़े और आज स्थिति ऐसी है कि देश रिफॉर्म एक्सप्रेस पर सवार हो चुका है। हमने स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स किए हैं, प्रोसेस से जुड़े रिफॉर्म्स किए हैं, पॉलिसीज में रिफॉर्म किए हैं। हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, हमारी उद्यमी ये सशक्त हो, भारत की हर चीज का वैल्यू एडिशन हो, उस दिशा में हमने प्रयास किया है। और मैं आज विश्वास के साथ कह सकता हूँ, आज भारत विश्व के साथ स्पर्धा करने के लिए पूरी तरह तैयार है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि अमेरिका के साथ व्यापार समझौते के बाद दुनिया का आत्मविश्वास और भी बढ़ गया है। उन्होंने कहा कि भारत कई देशों का भरोसेमंद साझेदार है, क्योंकि यह विश्व कल्याण में भूमिका निभा रहा है और वैश्विक मंचों पर विकासशील देशों की एक सशक्त आवाज बनकर उभरा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि बड़े देश भारत के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित करने के लिए उत्सुक हैं। श्री मोदी ने कहा कि भारत आज वैश्विक चुनौतियों का समाधान दे रहा है।
भारत आज विश्व में जो चुनौतियां पैदा हो रही है, उन चुनौतियों का समाधान देने वाला एक देश आशा की किरण बना हुआ है और हम समाधान दे रहे हैं। आज मेजर इकोनॉमी में भारत का ग्रोथ बहुत हाई है और हाई ग्रोथ और लो इन्फ्लेशन ये बहुत ही यूनिक संयोग है और ये हमारी अर्थव्यवस्था की मजबूती को प्रदर्शित करता है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया आशा भरी नजरों से भारत की ओर देख रही है, क्योंकि देश के पास बहुत बड़ी संख्या में युवा प्रतिभा मौजूद है।
जिस प्रकार से विश्व का भारत के प्रति आकर्षण बढ़ा है और उसमें भी विश्व भारत के टैलेंट का महात्म्य समझ रहा है, हमारे पास आज दुनिया का बहुत ही महत्वपूर्ण टैलेंट पूल है, युवा टैलेंट पूल है, जिसके पास सपने भी हैं, संकल्प भी हैं, सामर्थ्य भी हैं।
प्रधानमंत्री ने कल लोकसभा में कार्यवाही के दौरान कांग्रेस पार्टी के व्यवहार की भी निंदा की। उन्होंने कहा कि ये राष्ट्रपति कार्यालय जनजातीय समुदाय और संविधान का अपमान है। प्रधानमंत्री ने तृणमूल कांग्रेस के नेतृत्व वाली पश्चिम बंगाल सरकार पर घुसपैठियों को बचाने और अदालतों पर दबाव बनाने का भी आरोप लगाया। इससे पहले विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरोप लगाया कि विपक्ष को संसद में बोलने नहीं दिया जा रहा है।
हम हाउस को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते, लेकिन वो हाउस भी नहीं चल रहा है। क्यों? कि एलओपी को बोलने नहीं दे रहे। लेकिन हमारा कहना ये है कि दोनों हाउस मिलने के बाद ही पार्लियामेंट बनता है, एक हाउस से पार्लियामेंट नहीं बनता, ये दोनों स्तंभ है।
लोकसभा और राज्यसभा ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव को ध्वनिमत से पारित कर दिया है। लोकसभा की कार्यवाही आज विपक्ष के हंगामे के कारण लगातार बाधित रही और तीन बार के स्थगन के बाद कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। हंगामा भारत अमेरिका व्यापार समझौते समेत विभिन्न मुद्दों पर हुआ। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रदर्शनकारी सांसदों के व्यवहार पर नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि विपक्ष के सांसदों के कल सदन में अभद्र व्यवहार के कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धन्यवाद प्रस्ताव पर अपना उत्तर देने के लिए सदन में उपस्थित नहीं हो सके। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान। जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्र नागालैंड सरकार और पूर्वी नागालैंड पीपल्स ऑर्गेनाइजेशन ENPO ने फ्रंटियर नागालैंड टेरिटोरियल अथॉरिटी के गठन के लिए एक समझौता किया है। नई दिल्ली में गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि ये नागालैंड के लोगों के लिए ऐतिहासिक दिन है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उग्रवाद मुक्त, हिंसा मुक्त, विवाद मुक्त और विकसित नॉर्थ ईस्ट की जो कल्पना कर रही है, उसमें आज हम एक कदम और आगे।
आज एक बहुत बड़े लंबे समय से चलते हुए विवाद का सुखद अंत हो रहा है और इसका महत्व इसलिए ज्यादा है कि ENPO और नागालैंड सरकार ने ही आपस में चर्चा कर इस समझौते को एक शेप दिया है और लॉजिकल एंड तक पहुँचा है।
नागालैंड के मुख्यमंत्री ने कहा कि ये ऐतिहासिक समझौता न्यायोचित और समेकित शासन सुनिश्चित करने के प्रति सरकार की वचनबद्धता को दर्शाता है। भारत ने कहा है कि देशवासियों की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। आज नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने ये बात कही।
140 करोड़ भारतीयों का हित, उनकी ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बाजार स्थितियों और बदलते अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों के अनुरूप अपनी ऊर्जा स्रोतों में विविधता लाना हमारी रणनीति का मूल आधार है। भारत के सभी कदम इस बात को ध्यान में रखकर उठाए गए हैं और भविष्य में भी उठाए जाएंगे।
वेनेजुएला के तेल व्यापार पर श्री जायसवाल ने कहा कि व्यापार और निवेश को सम्मिलित करते हुए ऊर्जा क्षेत्र में वेनेजुएला भारत का एक दीर्घकालिक साझेदार रहा है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौते का पहला चरण लगभग तैयार है। नई दिल्ली में श्री गोयल ने कहा कि जल्द ही दोनों देशों के बीच संयुक्त बयान को अंतिम रूप दिया जाएगा।
अगले 4-5 दिन में एक जॉइंट स्टेटमेंट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और भारत के बीच में फाइनलाइज करके साइन कर देंगे और उस जॉइंट स्टेटमेंट के आधार पर शुरुआत हो जाएगी समझौते की पहली कड़ी। साथ ही साथ एक फॉर्मल एग्रीमेंट ड्राफ्ट हो रहा है और उस फॉर्मल एग्रीमेंट को मिड मार्च तक साइन करने का अंदाजा है। लेकिन 18% जो US टैरिफ्स घटने हैं वो जॉइंट स्टेटमेंट अनाउंस होने के बाद एग्जीक्यूटिव ऑर्डर द्वारा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कर दे।
कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि अमेरिका के साथ व्यापार समझौता देश के कृषि, विशेषकर फार्म और डेयरी क्षेत्र के हितों को पूरी तरह से सुरक्षित करता है। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि समझौता कूटनीति, विकास और गरिमा के एक नए मानक को दर्शाता है। भारत के पहले सहकार आधारित राइड हेलिंग प्लेटफॉर्म भारत टैक्सी का आज दिल्ली में औपचारिक शुभारंभ किया गया। भारत के इस पहले सहकारी प्लेटफॉर्म पर बिना किसी कमीशन और बिना अतिरिक्त शुल्क के मूल्य निर्धारण मॉडल काम करता है। इसका सीधा लाभ ड्राइवरों को मिलता है। सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि सहकारी टैक्सी ड्राइवरों की आमदनी बढ़ाएगी।
सारथी के अकाउंट से जो फिक्स चार्ज तय होगा भारत टैक्सी के द्वारा, उसके अलावे आपके पसीने की कमाई से 1% भी कमीशन भारत टैक्सी कभी नहीं काटेगी। इसका मतलब है आपकी समृद्धि बढ़ेगी। भारत टैक्सी का उद्देश्य भारत टैक्सी की पूंजी बढ़ाना नहीं है, भारत टैक्सी का उद्देश्य भारत टैक्सी के मालिक ऐसे मेरे सारथी भाइयों और सारथी दीदियों का मुनाफा बढ़ाना है।
ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। मेघालय में आज सुबह पूर्वी जयंतिया हिल्स जिले के थांगस्को क्षेत्र में एक कोयला खदान हुए विस्फोट में 18 लोगों की मौत हो गई। कई लोग अब भी खदान के अंदर फंसे हुए हैं। ये विस्फोट खनन गतिविधियों में इस्तेमाल होने वाले उच्च तीव्रता वाले डायनामाइट के विस्फोट के कारण हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि घटना अत्यंत दुखद है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी। घायलों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली पश्चिम बंगाल सरकार को बड़ा झटका देते हुए आज लगभग 20 लाख राज्य कर्मचारियों के लंबित महंगाई भत्ते डीए का भुगतान करने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने राज्य सरकार को 6 मार्च तक 25% बकाया डीए का भुगतान करने का आदेश दिया। न्यायालय ने अपने उन पुराने निर्देशों की पुष्टि की है जो वर्षों से लंबित थे। दिल्ली पुलिस के संयुक्त आयुक्त और जनसंपर्क अधिकारी संजय त्यागी ने कहा है कि पिछले वर्ष की तुलना में दिल्ली में लापता व्यक्तियों के मामलों में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में लापता व्यक्तियों विशेषकर बच्चों को लेकर अफवाहें फैलाई जा रही हैं।
पिछले वर्षों की समान अवधि की तुलना में लापता व्यक्तियों की रिपोर्टिंग के मामलों में कमी दर्ज की गई है। लापता व्यक्तियों की रिपोर्ट न केवल स्थानीय पुलिस थाने में दर्ज कराई जा सकती है बल्कि ऑनलाइन माध्यम से अथवा ERSS 112 के माध्यम से भी दर्ज कराई जा सकती है, जिसमें लापता बच्चों के मामले को विशेष प्राथमिकता दी जाती है। यह स्पष्ट किया जाता है कि दिल्ली में बच्चों के लापता होने अथवा अपहरण के मामलों में किसी भी संगठित गिरोह की संलिप्तता सामने नहीं आई है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 10 बजे परीक्षा पे चर्चा के 9वें संस्करण में देशभर के विद्यार्थियों से बातचीत करेंगे। कार्यक्रम के लिए 4,50,00,000 से अधिक विद्यार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों ने पंजीकरण कराया है। प्रधानमंत्री शनिवार को 2 दिन के मलेशिया दौरे पर रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय में पूर्वी क्षेत्र के सचिव पी कुमारन ने बताया कि ये प्रधानमंत्री की मलेशिया की तीसरी यात्रा होगी और ये मलेशिया के साथ संबंधों के प्रति भारत की मजबूत प्रतिबद्धता को दर्शाता है। अमेरिका स्थित ह्यूमन राइट्स वॉच की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के कार्यकाल में राजनीतिक आधार पर हजारों लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें से कई को बिना मुकदमे के हिरासत में रखा गया है और उन्हें नियमित जमानत देने से मना कर दिया गया है। वडोदरा में महिला प्रीमियर लीग क्रिकेट के फाइनल में दिल्ली कैपिटल्स ने रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु के साथ खेलते हुए ताजा समाचार मिलने तक 17वें ओवर में 3 विकेट पर 150 रन बना लिए हैं। दिल्ली कैपिटल्स लगातार चौथी बार फाइनल में पहुंची है, वहीं रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु दूसरी बार खिताब अपने नाम करना चाहेगी। एशियाई निशानेबाजी प्रतियोगिता के 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम स्पर्धा में सुरुचि सिंह और सम्राट राणा ने रजत पदक जीत लिया है। वहीं जूनियर वर्ग में रश्मिका सहगल ने महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल द्वारा आयोजित वंदे मातरम तटीय साइक्लोथॉन आज आंध्र प्रदेश में प्रवेश कर गया। इस राष्ट्रव्यापी साइकिल अभियान का उद्देश्य तटीय सुरक्षा के प्रति जागरूकता पैदा करना, मछुआरों को राष्ट्रीय सुरक्षा में भागीदार बनाना और युवाओं में देशभक्ति की भावना को बढ़ावा देना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत तेजी से आगे बढ़ रही वैश्विक व्यवस्था में एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में उभरा है। सरकार रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के विजन के साथ आगे बढ़ रही है और देश रिफॉर्म एक्सप्रेस पर सवार है। संसद के दोनों सदनों ने ध्वनिमत से राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पारित किया। लोकसभा में विपक्ष का हंगामा लगातार जारी रहा। केंद्र नागालैंड सरकार और ईस्टर्न नागालैंड पीपल्स ऑर्गेनाइजेशन ने फ्रंटियर नागालैंड टेरिटोरियल अथॉरिटी बनाने के लिए समझौता किया। मेघालय के पूर्वी जयंतिया हिल्स जिले में कोयला खदान में धमाके में 18 लोगों की मौत, राज्य सरकार ने जांच के आदेश दिए। और वडोदरा में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और दिल्ली कैपिटल्स के बीच महिला प्रीमियर लीग का फाइनल मैच जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।